सत्रहवां अध्याय महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना। यवसं जग्ध्य अनुदिनम् नैव दोग्ध्यौषधं पयः तस्यामेवं हि दुष्टायाम् दंडो नात्र न शस्यते। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद, यद्यपि तुम नित्य ही हरि घास चरती हो, किंतु तुम हमारे उपयोग के लिए अपने थन को दूध से भरती नहीं हो, क्योंकि तुम जानबूझकर अपराध कर रही हो। अतः तुम्हारे द्वारा गाय का रूप धारण करने के कारण तुम्हें दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य, गाय चरागाह की हरी हरी घास चरती है और अपने थन को दूध से भरती है, जिसे ग्वाले दूहते हैं। यज्ञ इसलिए किए जाते हैं कि प्रचुर बादल बने और पृथ्वी पर वर्षा करें। पयः शब्द से दूध तथा जल दोनों ही अर्थ ग्रहण होते हैं। देवता के रूप में पृथ्वी अपना यज्ञ भाग तो ग्रहण करती थी, अर्थात हरी हरी घास चरती थी, किंतु बदले में वह प्रचुर अन्न नहीं उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वह अपने थन को दूध से पूरित नहीं कर रही थी। अतः पृथु महाराज उसके अपराध के लिए उसे दंड देने की ठीक ही धमकी दे रहे थे। माता पृथ्वी ने पृथु महाराज के हाथों दंड स्वीकार करने से बचने के लिए गाय का रूप धारण किया था, क्योंकि वो सोच रही थी कि महाराज पृथु अगर ये देखेंगे कि सामने गाय है, वो अपनी तलवार ऊपर नहीं उठाएंगे, क्योंकि गो हत्या करना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है वैदिक सभ्यता के अनुसार। लेकिन इस बात से पृथु महाराज सहमत नहीं थे। वो कहते थे, कहने लगे कि तुमने तुम्हारे यज्ञों का फल स्वीकार किया है, जो भाग तुम्हारा था यज्ञ फल का तुमने स्वीकार किया, लेकिन उपज अभी तक नहीं दे रही हो। और आगे इस श्लोक में पृथु महाराज पृथु देवी जो कि गो रूप में है उनसे कह रहे हैं, यवसम जग्धि अनुदिनम। अनुदिनम मतलब तुम प्रतिदिन क्या करती हो, यवसम जग्धि, यवसम मतलब हरा भरा घास तुम खाते हो, लेकिन न एव दोग्धि औधसम पयः। पयः मतलब दूध, अपने थनों में औधसम दोग्धि अर्थात दूध नहीं भरती हो, न एव। तो ये सही बात नहीं है। प्रकृति का नियम यह है कि प्रकृति तुम्हें घास दे रही है और घास देकर तुम्हें दूध देना चाहिए, थनों में दूध भर देना चाहिए, ताकि मनुष्य इस दूध का पान करके संतुष्ट रहें। भगवान की व्यवस्था ऐसी है कि गाय घास चर गोचर भूमि में जाए और चरने के पश्चात पौष्टिक हो जाए और फिर उसके थनों में दूध भर दे और फिर मनुष्य इस दूध का पान करें, साथ साथ में गाय का बछड़ा भी, सबसे पहले गाय का बछड़ा बाद में मनुष्य। और ऐसे दूध का पान करने से मनुष्य की बुद्धि तेज हो जाती है और फिर श्रीमद् भागवत क्लास में सोते नहीं है, इसलिए सबको श्रीमद् गाय का दूध पीना चाहिए। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि वैदिक सभ्यता में गाय का दूध का पान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ऐसी बुद्धि बन जाती है जो कि आध्यात्मिक विषयों को समझने के लिए पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए आध्यात्मिक विषय समझने के लिए। कोई भी आकर इन चीजों को समझ नहीं सकता। जिनकी बुद्धि बहुत ही इंद्र तृप्ति की भावना से भरी हुई है, दूषित है, वो इन चीजों को समझ नहीं सकता। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहरित चेतसाम व्यवसायात्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसके हृदय में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा है, वो समाधि की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। उसकी बुद्धि स्थिर कभी नहीं हो सकती, हमेशा चंचल विचलित रहता है वो। और देखेंगे जो ज्यादातर भोग की भावना रखते हैं हृदय में, उनका आहार भी देखिए कैसे होता है। उनका आहार भी ऐसे ही होता है जो कि बिल्कुल रजोगुणी आहार होता है। जो मांसाहार करते हैं उनका तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार रहता ही है, लेकिन जो मांसाहार भी नहीं करते उनका भी भोजन देखिए कितना मसालेदार और बिल्कुल ऐसा होता है जो कि खाते ऐसे लगे कि आग आ रही है मुंह में से। तो इस तरह से भक्त जो होते हैं सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, और सात्विक आहार में से प्रमुख है गाय का दूध, भैंस का दूध नहीं, ऊंट का दूध नहीं, बकरी का दूध नहीं। हमारे देश में एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ रहे, नेता रहे, जिनको लोग अलग सम्मान से महात्मा भी बुलाते थे। कई चीजों में वैदिक सभ्यता से उनके विचार मिलते जुलते हैं और हमारे कृष्ण भावना के विचार भी आर्थिक क्षेत्र में, अर्थ विकास के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिलते जुलते हैं, लेकिन इस एक मामले में नहीं मिलते हैं। वो बताते थे कि मैंने बकरी का दूध का पान शुरू किया है क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे स्वास्थ्य में ज्यादा फायदा होता है। अपने ग्रंथों में भी उन्होंने ऐसे लिखा। और आजकल लोग भैंस का दूध पीना पसंद करते हैं, और क्योंकि उससे क्या कारण है भैंस का दूध पीते हैं, मलाई ज्यादा मिलती है उसमें, फैट ज्यादा है, मर्म ज्यादा है उसमें, इसलिए ये पीते हैं। और भैंस का दूध चाय में भी अच्छा लगता है ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस तरह से भैंस का दूध पीते हैं लेकिन गाय का दूध नहीं पीते। और शहरों में ये अवस्था हो गई है कि भैंस का दूध ज्यादा महंगा है गाय के दूध की वजह से। भक्तों के लिए अच्छा है क्योंकि गाय का दूध पे वो पी सकते हैं, सस्ता है, लेकिन वास्तव में गाय का दूध अमृत है। और इस अमृत का पान करने से बुद्धि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। गाय माँ है, हमारी माता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि सात माताएं होती हैं हर एक व्यक्ति की। सबसे पहले है पृथ्वी माता, क्योंकि वो हमारे माता जो वो होती है जो हमारे पालन पोषण करती है, देखभाल करती है। तो पृथ्वी माता हर दृष्टि से हमारा पालन पोषण करती है और वो हमें अनाज देती है, फल फूल देती है, सब कुछ देती है। तो पृथ्वी माता है। दूसरी है गुरु पत्नी। पहले वैदिक काल में गुरु गृहस्थ ज्यादा होते थे, सन्यासी बहुत कम होते थे, प्राय नहीं होते थे, क्योंकि सन्यासी तो केवल भ्रमण करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, परिव्रजक आचार्य, दीक्षा वगैरह का उसमें नहीं पढ़ते थे, शिष्यों का देखभाल करना ये वो सब नहीं, वो तो भ्रमण करते रहते थे। और जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे पढ़ाई करने के लिए, फिर जिस गुरुकुल में रहते थे वो गुरु गृहस्थी होते थे, तो उनकी पत्नी भी रहती थी जो उनको माँ के समान थे और वो बच्चों के समान उन शिष्यों को संभालती थी। तो दूसरी है गुरु पत्नी। तीसरे है ब्रह्म पत्नी अर्थात ब्राह्मण की पत्नी। ब्राह्मण भी ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ वर्ण माना जाता था वैदिक काल में, इसलिए ब्राह्मण भी ब्राह्मण को सम्मान दिया जाता था और ब्राह्मणी को उतना ही सम्मान दिया जाता था जितना कि अपने माँ को दिया जाता था। तो ये है तीसरी माता। चौथी है राजा की पत्नी अर्थात रानी। राजा भी प्रजा के पिता के बराबर है, क्योंकि वो सबका देखभाल करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, पालन पोषण सबका करते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं वो। तो इसी तरह जिस तरह से राजा पिता हो गए तो उनकी पत्नी अर्थात रानी माता हो गई, ये चौथे माता रहे। पांचवे रहे धात्री। धात्री मतलब जो बचपन में मां के अलावा जो दूध पिलाती है वो धात्री। छठी है, छठे माता गौ माता है। गौ माता वो भी हमें दूध पिलाती है, जिस तरह से माता हमें दूध पिलाती है। बचपन में जब हमारा जन्म होता है तो मां का दूध सबसे अच्छा कहा जाता है। आजकल तो ये फेरेक्स वगैरह वगैरह आ गया है, लेकिन आजकल लोग समझ लगे हैं कि मां का दूध जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है बच्चे के लिए, क्योंकि ये प्रकृति ने ऐसे नियम बनाया है। तो ये गौ माता भी मां कहलाती है। और सातवीं हमारी माता जिससे हमें जन्म लिया है, जिसके शरीर से हमें जन्म लिया है। तो सात प्रकार की माताएं, उनमें से एक गौ माता। और जिस तरह से जिस माता से हमने जन्म लिया है बचपन में, उनका दूध का पान करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हर दृष्टि से अच्छा होता है, उसी तरह से गौ माता का दूध का पान करने से हमें बहुत लाभ होता है। बल्कि गौ माता अपनी जननी से श्रेष्ठ है। जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया है उससे श्रेष्ठ गौ माता है। कोई बता सकते हैं क्यों? केवल दूध के दृष्टि से क्या कारण हो सकता है? एक तो आध्यात्मिक लाभ उससे होता है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है उस दूध से, और हम आध्यात्मिक विषयों को समझ सकते हैं। अमृत है गाय का दूध, और भगवान को प्रिय है, वो तो है, भगवान भी पीते थे, ठीक है। दूसरा कारण और हाँ, जो भी गाय जो है वैदिक दृष्टि से जो भी गाय से आते हैं, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, दूध है, शुद्ध माना जाता है, ये भी है। और क्या कारण? माँ जो मनुष्य माँ होती है, मनुष्य योनि की माँ, कितने महीने दूध पिलाती है अपने बच्चे को? 11 महीने पिलाती है बस। लेकिन गौ माता हमको कब तक दूध पिलाती है? जब तक हम बूढ़े हो जाते हैं। जब तक हम मरते नहीं तब तक गौ माता तैयार रहती है दूध देने के लिए। लेकिन मां का दूध केवल बचपन में ही हम पी सकते हैं, बड़े होकर नहीं पी सकते हैं। तो गौ माता वास्तव में देखिए कि इनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। अंत तक हमें वो दूध देती रहती है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण माता कहलाती है। तो आजकल क्या होता है, जरा ये बहुत एक सूक्ष्म बात है लेकिन इसे समझना आवश्यक है। गाय माता है इसलिए गाय की रक्षा करना आवश्यक है। जिस तरह से हम अपनी माँ माता पिता की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उसी तरह से बल्कि ज्यादा हमें गाय की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें दूध देती है, नाना प्रकार से हमें जीने देती है। तो जब हम गाय का दूध नहीं पीते हैं, सोचते हैं कि भैंस का दूध अच्छा है, तो इसका क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होगा? भैंस की जैसे बुद्धि हो जाएगी, वो तो है ही, वो भी है, लेकिन साथ साथ क्या होगा? जैसे जैसे गाय के दूध के लिए डिमांड जो है, जो लोगों में मांग कम हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा? गाय का वंश कम होगा। कम होगा मतलब क्या होगा? गाय को कत्ल खाने भेजेंगे ना, जब देखेंगे कि गाय की अभी जरूरत नहीं है, भैंस पड़े हैं, इतने सारे भैंसों को ही हम लेंगे, क्योंकि भैंसों के दूध के लिए डिमांड है, ज्यादा ज्यादा कीमत मिलती है, तो गाय को नहीं रखेंगे, तो गाय के वंश जो है संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए जितने ज्यादा भैंस बढ़ जाते हैं उतने कम गाय होंगे, अर्थात उतनी ज्यादा गोहत्या बढ़ेगी। अर्थात भैंस का दूसरा नाम है क्या? गोहत्या करने वाला। जो बफेलो भैंस है उसको काउ किलर कहते हैं। क्योंकि भैंस की वजह से लोग गाय की हत्या करते हैं। जितने भैंसों की संख्या बढ़ जाती है लोग इतने ज्यादा गाय की निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं। इसी तरह से हमें यह समझना चाहिए कि जितना अभी घरों में आप देखिए आप कौन सा दूध पी रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, भैंस का दूध पी रहे हैं। तो देखिए जितना आप भैंस का दूध पी रहे हैं उतना आप गौ माता के हत्या में आप सहभागी हो रहे हैं, क्योंकि आप प्रेरणा दे रहे हैं उन ग्वालों को कि वो भैंस ज्यादा बढ़ाएं और गाय कम करें। हमारे गौली भक्त नहीं है ना इधर कोई, उनको भी सुनना चाहिए। लेकिन समस्या आजकल ये भी है कि गाय का दूध मिलता भी नहीं है, और आजकल अलग अलग प्रकार के संकरित गाय आ गए हैं जो तथाकथित गाय हैं, लेकिन वास्तव में उनके दूध में वो शक्ति, वो तत्व, वो सत्व नहीं है, वो गुण नहीं है जो कि वास्तविक जो गो माता है उसमें होती है। नाना प्रकार के वैज्ञानिक ढंग से उनके अंदर न जाने क्या क्या परिवर्तन कर देते हैं, इंजेक्शन डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिससे कि वो गाय गाय नहीं रह जाती, कोई एक दूध देने वाली मशीन हो जाती है। इसलिए आजकल लोग गाय को माता न समझते हुए उसको एक दूध देने वाली मशीन समझते हैं, और इस वजह से आजकल विदेशी गाय आती हैं, जर्सी वगैरह, और उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि वो ज्यादा दूध देती हैं। लेकिन उनके दूध में, उनके गोबर में या उनके मूत्र में वो गुण बिल्कुल नहीं होते हैं जो कि इस असली गोमाता में होते हैं। इस तरह से हर दृष्टि से हम देखते हैं कि गोमाता की हत्या बढ़ती जाती है इन सब कारणों से। जब एक व्यवसाय की दृष्टि आ जाती है गाय के प्रति या दूध के प्रति, जब दूध बेचना आरंभ हो जाता है, एक व्यवसाय बन जाता है, उस हद तक गाय की हत्या बढ़ती रहेगी। क्योंकि केवल गाय को हम एक व्यवसाय या धन कमाने का एक यंत्र समझते हैं, दूध देने वाली मशीन। अभी फैक्ट्री में आपकी कई फैक्ट्री होंगे, आप में से कई लोग फैक्ट्री चलाते होंगे, कारखाना वगैरह, आपके फैक्ट्री में कोई मशीन हो या आपके घर में भी कोई मशीन हो, तो आप थोड़े समय के लिए मशीन को चलाएंगे, जब मशीन बिगड़ जाता है उसको रिपेयर करवाएंगे, उसका मरम्मत करवाएंगे, फिर मरम्मत करवाने के बाद ऐसा समय आएगा कि वो मशीन का उपयोग नहीं होगा, जिस काम के लिए आपने लाया है वो काम नहीं करता, तो क्या करते हैं आप, फेंक देते हैं, क्योंकि कोई खरीदेगा भी नहीं, वो अभी किसी भी काम का नहीं रहा। तो जिस तरह से आप एक मशीन को फेंक देते हो बाद में जब वो काम का नहीं रह जाता, अगर हमने गाय को एक मशीन की दृष्टि से जो कि हमें दूध दे रहा है इस दृष्टि से देखा तो क्या होगा, जब गाय दूध देना बंद कर देगी तब कतलखाने में बेच देंगे, क्योंकि अब हमारे काम की नहीं रही, गाय केवल दूध देती है और दूध देने के इसलिए हमने घर में रखा है और दूध देना बंद कर दिया तो बेच दिया कतलखाने। तो ये हो रहा है आजकल। लेकिन जब हम समझेंगे कि गाय केवल एक पशु नहीं है, केवल एक दूध देने वाली मशीन नहीं है, बल्कि हमारी माता है, तो गाय के जीवन के अंत तक हम गाय की सेवा करते रहेंगे। जिस तरह से माता घर में हमारे लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाती है, खाती है, हम खिलाती है, सब कुछ करती है, जब माता बूढ़ी हो जाएंगी, अभी पकाने के लिए शक्ति नहीं है शरीर में, तो अगर कोई लड़का कहे कि अभी जब तक तुम पकाती थी हमारे लिए वो अच्छा था, अभी पकाना बंद हो गया तो चलो अभी घर के बाहर चले जाओ, ये ठीक है किसी भी सभ्यता के दृष्टि से ठीक है नहीं? लेकिन ये हो रहा है आजकल, होता है ना, खास करके पश्चिम देशों में हो रहा है, और उन्हीं का नकल करते करते यहां भी हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, जब हम पशु और खास करके गाय के प्रति हम गाय की उपेक्षा करते हैं और उनकी हत्या करते हैं, जो जिस व्यवसाय की दृष्टि से हम पशु और खास करके गाय को देखने लगते हैं, हमारी मनोवृत्ति वैसे बन जाती है, और धीरे 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 से हमारे माता पिता परिवार के सदस्य और फिर जन समाज मनुष्य समाज के लोगों के प्रति भी उसी दृष्टि से हम देखने लगते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे ये भावना फैल जाती है। तो देखिए कितनी खतरनाक है, गाय की उपेक्षा करने से बात कहां तक फैल जाती है, सारे संसार में फिर यही हो जाता, यही भावना बन जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे लिए। यहां पर पृथु महाराज बताते हैं कि गो माता घास या पृथ्वी माता गाय के रूप में घास खा रही है लेकिन दूध नहीं दे रही है, इसलिए दंड के योग्य है। तो ये गाय की खूबी होती है कि वो घास खाकर अमृत समान दूध देती है। है कोई ऐसा मशीन जो ऐसे कर सकता है? हमने इतने बड़े बड़े कंप्यूटर बनाए हैं और हवाई जहाज बनाए, दूसरे लोकों में हम रॉकेट वगैरह भेजते हैं और इतना सब कुछ हमारा तकनीकी ज्ञान बढ़ चुका है, लेकिन क्या हमारे वैज्ञानिक ऐसा कोई यंत्र बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं जिसमें एक ओर में आप घास घुसाएं और दूसरी ओर से दूध निकल आए? है कोई मशीन बना सकते हैं? कोई नहीं। लेकिन फिर भी गाय की हत्या चालू है। तो इस तरह से गाय भगवान की सृष्टि का चमत्कार है, केवल मनुष्य जीवन के पालन पोषण और उसके उद्धार के लिए, उसके जीवन के विकास के लिए, ताकि धीरे धीरे से वो सत्वगुण में आए, क्योंकि गाय सत्वगुण में होती है। पशु भी कई प्रकार के होते हैं, ऐसे पशु होते हैं जो सत्वगुण में होते हैं, रजोगुण में, तमोगुण में। तमोगुण में होने वाले पशुओं के कोई नाम बता सकते हैं? नहीं, तमोगुण वाले, तमोगुण वाले जैसे ऊंट, गधा, ये सब तमोगुण वाले पशु होते हैं, और शेर इत्यादि ये रजोगुण वाले पशु होते हैं, रजोगुण में स्थित होते हैं। और जो गाय है वो वास्तव में सत्वगुण में स्थित होती है। आप गाय को देखिए कितनी शांत लगती है। बंदर को देखिए, बंदर को कभी शांत देखा है आपने? तो बंदर कभी भी सत्वगुण में नहीं हो सकता, लेकिन गाय को देखिए कितनी शांत स्वरूप की होती है। कुछ भी हो जाए आराम से चलती है, जाती है, इधर उधर घूमती है, गाय घास खाती है, चबाते रहती है शांति से, कोई तकलीफ नहीं, स्थित प्रज्ञ जैसे आराम से काम करती है। सत्वगुण के लक्षण होते हैं। हम अपने जीवन में भी देखते हैं, कई लोग होते हैं हमेशा उत्तेजित रहते हैं, कुछ करना, ये करना, वो करना, ये करना, तो रजोगुण का प्रभाव है। कई लोग होते हैं शांत होते हैं, जो भी हो विचलित नहीं होते, चल रहा है चलने दो, चल रहा है, सत्वगुण का प्रभाव होता है उसमें। हाँ, कभी कभी ये तमोगुण का प्रभाव भी हो जाता है, क्योंकि तमोगुण में ज्यादा आलस हो जाती है। तो इस तरह से गाय जो है वो सत्वगुण में स्थित होती है, इसलिए गाय का दूध का पान करने से सत्वगुण का विकास हमारे चित्त में हो जाता है। तो गाय केवल घास खाकर दूध देती है तो इससे कितना फर्क पड़ता है? देखिए घास क्या चीज है? घास की कोई कीमत है? ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा घास का अंदर क्या पता नहीं क्या चमत्कार किया है भगवान ने, कि गाय के शरीर के अंदर क्या परिवर्तन हो जाता है केवल घास से, कि अमृत पैदा हो जाता है, जिस अमृत से हमारी बुद्धि तेज हो जाती है और हम भगवान को समझ सकते हैं। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, ध्रुवा स्मृति ही विप्रलंबे मोक्ष सर्व ग्रंथिनाम। शास्त्रों में बताया है कि सबसे पहले आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है, और अस्तित्व शुद्ध होने से ध्रुवा स्मृति ही, हमारी ध्रुवा, हमारी स्मृति शक्ति तेज हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और इसके बाद में हम मोक्ष के मार्ग में अर्थात आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के मार्ग में हम तेजी से बढ़ सकते हैं। तो केवल गाय का दूध पीने से यह फायदा होता है। तो इस तरह से हम भगवान श्री कृष्ण के लीला में भी ऐसे सुंदर सुंदर वर्णन देखते हैं। आखिर कृष्ण का नाम तो गोपाल है, गोविंद है, गायों की रक्षा करने वाले, गायों का पालन करने वाले हैं। तो जब नंद महाराज वृंदावन से मथुरा गए थे, कंस के राज में उनका कर भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए गए थे, तो वहां उनकी मुलाकात वसुदेव से हुई। वसुदेव उनके पुराने मित्र थे। कृष्ण प्रकट हो चुके थे और कई असुर आते थे, आना आरंभ हुआ था असुरों का। तो जब नंद महाराज गए वहां मथुरा में, तो उस समय वसुदेव ने उनको पूछा, कई प्रश्न पूछे। जैसे दो मित्र जब बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो आपस में प्रश्न करते रहते हैं, कैसे चल रहा है, व्यवसाय कैसे है। तो इस तरह से वसुदेव नंद महाराज को पूछने लगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा, आपकी गौएं तो ठीक है ना, गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा है, उनके लिए अच्छा पानी की व्यवस्था है। तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि सोना कितना है, बैंक में कितने हैं, कौन से कंपनी के शेयर हैं, ये सब नहीं पूछा। टेलीविजन कौन से कंपनी का है, ये पूछ सबसे पहले ये पूछा, गायें गौएं कैसे हैं, उनके लिए चारा ठीक है, घास ठीक है, चरते अच्छी तरह से, गाय खुश है, पीने के लिए व्यवस्था भी पाने की गाय के लिए अच्छी है। फिर बाद में सब दूसरी बातें हुई। इसी तरह से माता यशोदा, वो कृष्ण भगवान के माखन चोरी से बड़े हैरान थे। वो देखती थी कि अपने घर में इतना मक्खन पड़ा है, दूध पड़ा है और दही पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, लेकिन ये मेरा बेटा अपने यहां मक्खन छोड़ के दूसरों के घर में जाके मक्खन क्यों खाता है, उनके मक्खन में क्या खास बात है कि अपने घर के मक्खन में नहीं है। हमेशा कृष्ण को बोलती थी कि यहां कोई कमी है तुम्हारे लिए, दूध है, मक्खन, 9 लाख गौए हैं नंद महाराज के, कोई कम है, क्या चीज की कमी है तुम्हें, क्यों जाते हो सब जगह चोरी करते हो माखन ये वो वहां, और फिर हमें शिकायत सुननी पड़ती है। तो हमेशा हैरान रहती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर कृष्ण को ऐसा दूध मक्खन इत्यादि खिलाऊं पिलाऊं जो इतना स्वादिष्ट हो, अमृत के समान हो, तो कभी कृष्ण शायद दूसरों के यहां नहीं जाएंगे, शायद कोई कमी होगी अपने दूध में मक्खन में। तो फिर उन्होंने नंद महाराज के 9 लाख गौओं के बीच में से सबसे अच्छे अच्छे गाय चुने और उनको स्वादिष्ट से स्वादिष्ट घास खिलाया। हम घास खाएंगे हमको स्वादिष्ट नहीं लगेगा, लेकिन गौओं को जो स्वादिष्ट लगता है। तो गायों को स्वादिष्ट से स्वादिष्ट घास खिलाया, जिससे कि उनका दूध जो है वो भी स्वादिष्ट से स्वादिष्ट था। मतलब जितना अच्छा घास या जितना अच्छा चारा आप गावों को देंगे, उतना मीठा और अमृत के समान वो दूध होगा। जिस तरह से अगर हम अच्छी तरह से भोजन वगैरह करेंगे तो हम उतने ही अच्छे ढंग से अपना काम कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे। तो उसी तरह से गाय जितने अच्छा चारा खाती है उतना ही अच्छा वो दूध दे पाएगी। तो माता यशोदा ने सोचा कि ऐसे विशेष चुने हुए गावों को मैं लूंगी और उनको घास अच्छा सा खिलाकर जो अच्छे से अच्छा दूध मिलेगा उस दूध में से मैं उसको दही बनाऊंगी, फिर दही से मैं मक्खन बनाऊंगी और ये मक्खन कृष्ण को खिलाऊंगी। तो खुद बनाती थी। तो इस तरह से माता यशोदा ने कृष्ण को उत्कृष्ट श्रेणी का मक्खन खिलाया। लेकिन माता यशोदा के लिए दुर्भाग्य की बात है कि कृष्ण ने माखन चोरी करना बंद नहीं किया। लेकिन खैर, इस बात से हम क्या सीख सकते हैं कि गाय का चारा जो होता है जब वो खाती है तो दूध खुद ब खुद दे देती है। लेकिन आजकल क्या परिस्थिति हुई है, आजकल क्योंकि लोग गाय को दूध का मशीन समझते हैं, इसलिए नाना प्रकार के ऐसे वैज्ञानिक भी ये ज्ञान देते हैं। वैज्ञानिक भी आजकल सबसे बड़े असुर हो रहे हैं, क्योंकि वो सब केवल भौतिक दृष्टि से देखकर लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो वो देखते हैं मशीन में, जैसे हम कहते इतना पेट्रोल डालेंगे इतना ये होगा, इतना ये डालेंगे उतना बाहर आएगा। तो उन्होंने अपने असुरी संशोधन से ये साबित किया है कि गाय के चारे में अगर आप कुछ मांस के टुकड़े मिलाएं, मच्छी के टुकड़े मिलाएं वगैरह वगैरह, हड्डियां मिलाएं, ऐसा कुछ मिलाएंगे तो गाय की पौष्टिकता बढ़ जाती है, इसलिए वो दूध ज्यादा देती है। तो आजकल गाय के चारे में ये लोग पैक करके बेचते हैं, कंपनी लोग वगैरह, ऐसे कंपनी होते हैं जो इन चीजों को बेचते हैं। तो केवल भौतिक या आर्थिक दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से देखने से यही बात हो जाती। तो वो ये नहीं देखते कि भले जाए गाय ज्यादा दूध दे, ज्यादा समय तक नहीं देगी, लेकिन फिर भी ज्यादा दे तो उस दूध में वो मिठास वो गुण नहीं रहेंगे जो कि माता यशोदा ने स्वादिष्ट घास खिलाने से जो दूध में गुण आए थे, वो ये सब चीजें खिलाने से गुण नहीं आएंगे दूध में। और ऐसे दूध का पान करने से फिर वो बुद्धि तेज नहीं होगी। आजकल ऐसे लोग करते, ये सब कृत्रिम प्रकार के चारे खिलाते हैं गाय को, गाय को अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन देते हैं, अलग अलग विदेशी गाय देशी गायों का मिलन करके संकरित गाय पैदा करते हैं, नाना प्रकार के ऑपरेशन वगैरह करते हैं। ऐसे सब कृत्रिम रूप से ये करने से जो दूध निकलता है गाय के, वो फिर वास्तव में दूध नहीं रहता, कोई और ही वस्तु बन जाता है। वो दिखने में दूध लगता है लेकिन वास्तव में दूध नहीं है। इसलिए आजकल हम पढ़ते हैं अखबार में, थोड़े दिन पहले भक्तों में चर्चा हो रही थी बंबई में, अखबार में कोई खबर आई थी, कई वैज्ञानिक कहते हैं कि दूध का ही पान करने से ये बीमारी होती है वो बीमारी होती है। ये कितनी मूर्खता है। वास्तव में सच्चा दूध पीने से बीमारियां दूर हो जाती है, बीमारियां होती नहीं है। लेकिन वो भी जो कह रहे थे वो सत्य इसलिए था कि किस दूध की बात कर रहे हैं, वो किस गाय के दूध की बात कर रहे हैं। उन गायों के दूध की बात कर रहे हैं जो वास्तव में गाय नहीं है, जो पहले संकरित गाय है, जिनमें नाना प्रकार के रसायन केमिकल्स भर भर के उनको एक मशीन बना दिया गया है, जिनको बाहर हरा चारा नहीं दिया जाता, अच्छा पानी नहीं दिया जाता, अच्छा खुली हवा में छोड़ा नहीं जाता, जिनको केवल घर में उस इस एक छोटे से कमरे में रख के बंद किया जाता है, स्टॉल फीडिंग जिसको कहते हैं, और फिर जिसको क्या खिलाया जाता है, हड्डियां मांस मछली वगैरह खिलाई जाती हैं, तो वो गाय गाय कहां की रही, वो तो गौ माता नहीं रही, कोई और विचित्र पशु बन गई वो। तो ऐसे पशु का दूध से बीमारी नहीं होगा तो और क्या होगा, बीमारी अवश्य होगा। लेकिन असली गौ माता को प्रेम से देखभाल करने से, उसके अच्छे तरह से पालन पोषण करने से, हरे हरी भरी खेतों में या वनों में उसको ले जाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो फिर जो दूध ऐसे गाय से आएगा उस दूध से शरीर का पालन पोषण होगा और बुद्धि भी तेज हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसा अन्न वैसा मन। तो जो अन्न दूध वो गाय में जाता है, जो अन्न खाती है गाय, तो उसके अंदर वो गुण उस दूध में आ जाते हैं, वो दूध को हम पीते हैं तो वो गुण हमारे चित्त में आ जाते हैं। मतलब ये भी मांसाहार करने के बराबर है, क्योंकि गाय को मांस खिलाया जाता है, फिर वो खाती है, वो दूध देती है, उस दूध का पान हम करते हैं, इसलिए वो गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो देखिए आजकल हमारे समाज में इतना परिवर्तन हो चुका है केवल इस वजह से कि हम सब कुछ व्यवसाय या भौतिक दृष्टि से देखते हैं, धार्मिक या शास्त्रों की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो गाय का धर्म क्या होता है, घास खाना दूध देना। पृथ्वी माता नहीं दे रही है तो दंड दे रहे हैं पृथ्वी महाराज, क्योंकि ये एक प्रकार का चीटिंग है, धोखा है। जब गाय घास खाती है, फ्रेश हरा भरा घास खाती है, तो दूध देना चाहिए, खास करके उम्र जब ठीक है तब। लेकिन आजकल उल्टा चीटिंग चल रहा है। क्या हो रहा है कि गाय का बछड़ा जो है उसको दूध नहीं दिया जाता, केवल गाय के बछड़े को साइड में रख के मनुष्य दूध ले लेता है और वो बेच देता है ग्वाला। गाय दूध क्यों देती है, कब देती है गाय दूध, जब बछड़ा होता है तब देती है ना। जिस प्रकार से मनुष्य योनि में भी मां दूध कब देती है, जब बच्चा होता है तब। तो उसी तरह से गाय उस समय दूध देती है जब उसका बछड़ा होता है या बछड़ी होती है। तो गाय के दूध देने का प्रमुख उद्देश्य है अपने बछड़े को पहले पिलाना, और उसके बाद में जो दूध रह जाता है वो मनुष्य को पीना चाहिए, यह नियम होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे नियम है कि पहले, ठीक वो महीनों की संख्या हमें याद नहीं है, लेकिन शायद एक या दो महीने पहले, पहले एक महीने में मनुष्य को गाय से दूध लेना ही नहीं चाहिए, केवल बछड़े को मां के साथ छोड़ना चाहिए, ताकि गाय के जो चार थन होते हैं, चारों थनों में से बछड़ा पर्याप्त मात्रा में पिए, कोई लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा दूध पी लेगा बछड़ा तो बीमार पड़ जाएगा, डायरिया हो जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन जब हो जाएगा प्रकृति के नियम से वो पीना बंद कर देगा। अपने आप प्रकृति ने इसको कंट्रोल किया हुआ, नियंत्रण में किया हुआ है। उसके बाद में धीरे से एक थन से जो गोपाल है वो थन को दोह सकता है, फिर थोड़े समय बाद दो थन बछड़े के लिए, दो थन मनुष्य के लिए, चार थन होते हैं, और थोड़ी देर बाद तीन थन मनुष्य के लिए, एक थन गाय के बछड़े के लिए। तब तक गाय का बछड़ा इतना बड़ा हो जाता है या हो जाती है कि वो फिर मां से दूध नहीं पीती है, लेकिन और थोड़े समय के लिए दूध रहता है गाय के थनों में, इसलिए मनुष्य उसका लाभ ले सकता है। ये शास्त्रों पुराणों में बताया गया, ये सब नियम है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल गाय को अपने बछड़े से अलग किया जाता है और बछड़े को मां से पीने के बजाय उसको बाल्टी में दूध दिया जाता है। हमने अभी खुद देखा है, बहुत खराब चीज है ये। बछड़े को पीना चाहिए मां से, सीधा गाय से। तो कोई दूध पिलाते हैं, अलग सा दूध पिलाते हैं कि सबका मिला हुआ दूध, सारे गायों का मिला हुआ जो दूध आता है उसमें से थोड़ा बहुत बाल्टी में पिला देते हैं। दूसरी बात, जब गाय अपने बछड़े को देखती है और उसके साथ में बछड़ा होता है तो दूध ज्यादा देती है वो, क्योंकि वो प्रसन्न हो जाती है। जब बछड़ा उसे दूर लिया जाता है तो दुखी हो जाती है। जिस तरह से मां अगर अपने बच्चे से बिछड़ जाए तो कितना दुखी हो जाएगी मनुष्य जीवन में भी, तो गाय को भी जब लोग बछड़े को मां से अलग कर देते हैं तो गाय फिर पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं देती है। लेकिन इस सूक्ष्म बात को लोग समझते नहीं है, और लोग समझते भी हैं तो देखिए कितनी क्रूरता करते हैं। लेकिन दूर से केवल गाय को, बछड़े को रखते हैं, उसको दिखाते हैं गाय को कि देखो तुम्हारा बछड़ा हमारे सामने है, तो कम से कम गाय देखता है कि हाँ मेरा बछड़ा है इधर, फिर दूध देती है गाय। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि एक बछड़े के बछड़ी का एक पुतली बनाते हैं जिसमें घास भर के, और पुतली रख देते हैं गाय के सामने ताकि गाय दूध दे दे। तो ये भी अलग अलग प्रकार के धोखे हैं, चीटिंग है, असुरी प्रवृत्ति के कार्य हैं सब, और ये आजकल हर एक जगह चल रहे हैं। ये जो मिल्क डेयरी होता है, डेयरी फार्मिंग जो है आजकल नाम बताए, ये सब वैदिक पद्धति में नहीं था। जितना दूध हमें आवश्यक है उतने हम एक दो गाय रखते थे घर में, और उतना दूध पीकर हम संतुष्ट होते थे, कोई खर्चा नहीं। गाय चरने जाती थी जंगल में, बाजार से कोई खास करके विशेष चारा उनके लिए लाने की आवश्यकता नहीं थी। बीमार पड़ जाती थी तो उनको मालूम था कौन सा चारा खाना है, कौन सा घास खाना है, खाकर खुद में खुद ठीक हो जाती थी। कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, केवल 2-3 लीटर दूध देती थी रोज, जो हमारे लिए काफी था, परिवार में 6-7 लोग हो काफी है। लेकिन जैसे दूध का उत्पादन करना एक व्यवसाय बन गया, तब से लोग देखने लगे यहां कैसे बढ़ाया जाए। तो फिर जर्सी गाय आए और विदेशी होल्स्टीन, फ्रीजन, ये अलग अलग नस्ल आए, जाति आए गायों के, और फिर सोचने लगे कि हमारी देशी गाय तो क्या, वो तो दूध 2-4 लीटर देती है, लेकिन ये देखो जर्सी गाय कितनी 10 देती है 20 देती है, लेकिन कितनी बीमार पड़ती है और बाहर नहीं चल सकती, और उसका बैल खेती नहीं कर सकता, ये सब नहीं देखते हैं। तो इस तरह उसके दूध में क्या गुण होते हैं, उसके गोबर में, गौमूत्र में क्या गुण होते हैं, वो नहीं देखते। तो इस तरह से ये डेयरी फार्म वगैरह जो है ये वैदिक पद्धति में नहीं बैठता है। इंसान को चाहिए कि केवल गौ माता की सेवा करे, उसके दूध का पान करे और हरे कृष्ण का जप करे, कीर्तन करते रहे और गीता भागवत की कथा सुनते रहे और प्रसाद खाए, और क्या चाहिए जीवन में। यही सरल जीवन, उच्च विचार, ये वैदिक पद्धति है। तो पृथु महाराज यहां बता रहे हैं कि भगवान ने जो तरीका बताया कि तुम घास देकर दूध देना चाहिए, तुम नहीं दे रही हो, तो इसलिए दंड दे रहे हैं। तो पृथु महाराज का कहना भी सही था। तो मूल बातें आज के प्रवचन से ये है कि गाय हमारी माता है, इसलिए गाय के दूध का सेवन करके हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका?
कैसा रियल गाय? तो कौन से गाय को हम रियल गाय, मतलब यही गाय है कि वो, ये तो डिफरेंट प्रकार की गाय है।
असली गाय कैसे, मतलब जिसको हम गौ माता कहते हैं, उसके दो लक्षण होते हैं। एक है पीठ का ककुद, पीठ पे होना चाहिए, हा? ककुद कहते हैं उसको, पीठ का ककुद, हम्प, इंग्लिश में हम्प कहते हैं। हाँ, कितने बड़े थे। और दूसरा गल कंबल, गले के नीचे एक जो होगा, वैसे बहुत ऐसे हल्का सा, ऐसे पर्दे की तरह होगा, नीचे से लंबा सा, बहुत नीचे तक जाता हुआ। हाँ, तो ये दो चीजें होने चाहिए। लेकिन जर्सी गाय को आप देते, विदेशी गाय कैसे होते हैं, सपाट थोड़ा बहुत इतना कुछ हो सकता है ऊपर, ककुद ज्यादा नहीं, और गल कंबल भी नहीं, और आधे वो लगते हैं भैंस की तरह भी। और आजकल वैज्ञानिक लोग न जाने क्या क्या करते हैं, गाय भैंसों को मिलाते हैं, फिर इनको ये योनि से वो योनि, क्या क्या असुरी प्रवृत्ति के उग्र कर्म करते रहते हैं, संशोधन, वे उनको रिसर्च कहते हैं, संशोधन। लेकिन इसके सूक्ष्म रूप से क्या परिवर्तन होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो इसके बारे में सोचने की उनकी बुद्धि नहीं है। तो ये कम से कम दो ऐसे लक्षण होने चाहिए गो माता में। सिंह नहीं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सिंह में कोई
इतने
ऐसा नहीं है। आमी रसायन इतका घातले मुनुन ते आता येत नहीं रसायन। प्रश्न ये है कि आजकल खेती में रसायन डालने के नहीं डालेंगे तो खेती का उपज नहीं होता है। वास्तव में क्यों है ऐसी परिस्थिति? ऐसी परिस्थिति इसलिए आई है कि हमने रसायन इतने डाल दिए हैं कि जमीन की उर्वरा शक्ति बिल्कुल कम हो गई है, इसलिए जमीन की ताकत ही खत्म हो चुकी है। जमीन में ये केमिकल डाल डाल के उसको हमने बिल्कुल बेकार बना दिया है, बंजर भूमि बनने के जा रही है वो, इसलिए अभी उसमें कोई शक्ति नहीं रही, उर्वरा शक्ति नहीं रही। लेकिन देखिए, ये जो रासायनिक खेद है, खाद, इसको जमीन में डाल के ऐसे लगता है कि उत्पादन दुगना तीन गुना हो गया, लेकिन 20-25 साल के बाद में वो जमीन बंजर भूमि बन जाती है, रेगिस्तान बन जाता है। अमेरिका और यूरोप में ऐसे हजारों हजारों करोड़ों एकड़ पड़े हैं जो अभी बंजर भूमि बन गई है, जो पहले जिसमें इतने सारे करोड़ों टन उपज होता था अनाज का, आज बंजर भूमि। क्यों? क्योंकि इतने रासायनिक खाद का प्रयोग किया वहां, जो कि मिट्टी का आहार नहीं है। और इसलिए 50-60 साल में उन्होंने सबका सत्यानाश कर दिया अपने भूमि का। लेकिन देखिए भारतवर्ष में हजारों हजारों सालों से भूमि जैसे है वैसी है, उतनी ही शक्तिशाली है, उसकी उर्वरा शक्ति कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मिट्टी का जो सच्चा आहार है वो मिट्टी को मिलता रहा, जो भी नैसर्गिक आहार है जैसे कि गोबर सबसे उत्कृष्ट आहार है, वो मिलता रहा, इसलिए मिट्टी टिकी हुई है, अभी तक उसकी उर्वरा शक्ति टिकी हुई है। पंजाब में भी आजकल ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पंजाब में भी आजकल उत्पादन 30% कम हो गया है। पहले हम कहते थे हरा आंदोलन, ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, हरी क्रांति, क्या कहते थे उसको, हरित क्रांति। अभी देखिए क्या हो गया है, धीरे धीरे से अभी देखिए आगे चल के और 10 सालों में क्या होगा, क्योंकि जितना जितना हम रासायनिक खाद बढ़ाएंगे 20-25 साल में उसका सही असर पता चलता है। पहले 20 सालों में हमें लगता है कि वाह कितना उत्पादन बढ़ रहा है, उसके बाद में से वही समस्या, यहां तक देखते हैं, आगे की बात हम नहीं देखते हैं, दूर की दृष्टि नहीं रखते हैं कि आगे के लिए क्या होगा। अपने पीढ़ी में जो खाना है जो खा लो, उत्पादन बढ़ा लो, अपने पुत्र उनके पुत्रों के लिए कुछ भूमि छोड़ो मत, बंजर भूमि छोड़ के चले जाओ, ये आशीर्वाद हम छोड़ रहे हैं हमारे अगले पीढ़ियों के लिए कि तुम, हाँ, खेत का मार्ग, इन्फ्लेशन वगैरह मतले, थोड़ा पैसा छोड़ के जाते हैं जो भी, लेकिन पैसे को तो हम खा नहीं सकते, नोटों को खा सकते हैं जब भूख लगती है तो। अगर जमीन में उत्पादन नहीं होगा तो नोटों को क्या करेंगे खाकर, हमारे फैक्ट्री के नट बोल्ट को खाएंगे क्या करेंगे, हमें जमीन का उत्पादन चाहिए। तो इसे हाँ माइक
हरे कृष्ण
हरे
अदर रीजन इज वी हैव स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ काउस बफलोस वी डोंट हैव द नेचुरल मैन्यूर वी आर नॉट यूजिंग दैट मैन्यूर नाउअडेज सो दैट्स व्हाई वी मे नॉट गेटिंग द यील्ड फ्रॉम द फील्ड
हाँ सही बात है कि हम जो मिट्टी के सच्चा आहार है उसका प्रयोग नहीं करते हैं केवल इस नकली आहार को प्रयोग करते हैं जिसलिए मिट्टी का स्वास्थ्य मिट्टी का आरोग्य खराब हो जाता है जैसे हमारा शरीर है उसका स्वास्थ्य रहता है उसी तरह से पृथ्वी माता के शरीर का स्वास्थ्य भी रहता है मिट्टी का भी स्वास्थ्य रहता है अगर हम गोबर वगैरह सब खिलाया मिट्टी को तो मिट्टी का आरोग्य ठीक हो जाएगा तंदुरुस्त हो जाएगी अभी समस्या ये हुई है मिट्टी बीमार हो गई है क्योंकि हमने रसायन खिला खिला कर उसको बीमार बना दिया है इसलिए अभी जिस तरह से एक शराबी शराब पीना शुरू करता है फिर शराब के बिना रह नहीं पाता और फिर उसको ज्यादा से ज्यादा शराब चाहिए उतना ही तथाकथित आनंद प्राप्त करने के लिए ठीक उसी तरह से हमने भी ये नशा करके मिट्टी को खराब कर दिया अभी उतना ही उत्पादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा जो जितना अगर 1 किलो रसायन डालकर आपको अमुक इतना आपको वजन अनाज मिलता था पहले 5 साल बाद आप देखिए आपको उतना ही अनाज पाने के लिए 10 किलो रसायन डालना पड़ेगा ये समस्या है तो खर्च कितना ज्यादा होता है
कि जहां जिस जमीन पे घास उगती थी उधर उन्होंने एक बार रासायनिक खाद डाल दिया ऐसे ही देखने के लिए क्या होता है तो उस साल 1 साल वो अच्छी तरह से आ गए लेकिन अगले साल जो है वो 2.5-3 फुट जो घास है वो 6 इंच तक भी नहीं आई सिर्फ 1 ही साल में
सही बात जो भगवान के नियम के खिलाफ है वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती तो थोड़े समय की दृष्टि में हमें लगता है कि वाह कितना अच्छा हुआ लेकिन बाद में चल के देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है
अच्छा आपने बताया कि गाय का दूध पीना बहुत अच्छा है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए और स्वास्थ्य के लिए भी लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि गाय का दूध एक तो मिलता नहीं है और गाय का दूध मिलता भी है तो वो संकरित गाय का रहता है तो इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए
अपनी गाय रखनी चाहिए पालन करना चाहिए और क्या और कोई उपाय नहीं है और अपने गायों को रखकर इसलिए हम गौशाला बनाएंगे धीरे धीरे भी आशा करेंगे कि हो जाए हो जाएगा और इसलिए प्रचार भी करें लोगों को कि ये सब जर्सी वगैरह न रखें शुद्ध दो अच्छी गाय रखें और अच्छी तरह से उनका देखभाल करके समाज में अच्छा सा दूध भी पिलाएं सबको ताकि लोगों की बुद्धि थोड़ी शुद्ध हो जाए ठीक है माइक में
हम गाय के बारे में बताने जाते तो वो बताते कि आप नहीं करते तो आप कैसे बता रहे कि आप उनका घास लेके आने का और हरी भरी घास देना पड़ता है तो आप उनका बारे में नहीं समझते इसलिए वो हमारे जो बातें बताते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं
हाँ वो भी सही है जब तक हम करेंगे नहीं हम जो कहेंगे उसके बारे में लोग कहेंगे तुम नहीं करते हो हमको क्यों बोलते हो ऐसे लोग बोलते हैं तो इसलिए हमें करके दिखाना है आचरण से जो करके लोगों को बोलेंगे उससे ज्यादा वजन होता है लेकिन